नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर गहराई से बात करने वाले हैं। शीर्षक है वातावरण परिशोधन हेतु युग शिल्पियों का दायित्व। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो बदलाव का समय है, जिसे पूज्य गुरुदेव युग संधि कहते हैं, इसमें हम सबकी, मतलब आम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है।
जी बिल्कुल, ये उद्बोधन हमें बताता है कि ये एक असाधारण समय है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, और गुरुदेव के अनुसार ऐसे संधि काल में आप देखें तो निर्माण और ध्वंस दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहाँ वातावरण का मतलब सिर्फ वो हवा पानी वाला पर्यावरण नहीं है।
अच्छा, मतलब और क्या शामिल है इसमें?
इसमें हमारे विचारों का, हमारे संस्कारों का, हमारे आसपास के माहौल का, सबका वातावरण शामिल है। आज हम जो प्रकृति में गड़बड़ देख रहे हैं ना, बाढ़, सूखा, तूफान, या फिर नई पीढ़ी में जो भटकाव बढ़ रहा है, नकारात्मकता बढ़ रही है, गुरुदेव कहते हैं कि ये सब उसी बिगड़ते हुए समग्र वातावरण का ही असर है।
तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब सिर्फ पेड़ लगाने या यज्ञ करने से ही नहीं, विचारों को भी शुद्ध करना है। पूज्य गुरुदेव ने खुद तो बहुत कठिन तपस्या की, जैसे भगीरथ या दधीची ऋषि ने की थी, लेकिन हम जैसे आम लोगों से उन्होंने क्या चाहा? मतलब हम क्या कर सकते हैं इस बड़े बदलाव में? स्रोत में इस पर क्या कहा गया है?
हाँ, इस पर बहुत जोर दिया गया है कि ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ा सरल सा उदाहरण दिया है, जैसे कहते ना, रानी मक्खी अकेले छत्ता नहीं बना सकती, या कोई सेनापति अकेले ही पूरी लड़ाई नहीं जीत लेता। वैसे ही ये युग बदलने का काम अकेले नहीं होगा, इसीलिए अपने 75वें जन्मदिन पर, मतलब हीरक जयंती वर्ष में, उन्होंने कुछ खास काम हम सबके सामने रखे सामूहिक प्रयास के लिए।
अच्छा, हीरक जयंती वर्ष में, तो क्या थे वो काम? पहला क्या था?
पहला काम था 1,00,000 धर्म प्रचारकों का निर्माण। ये बहुत दिलचस्प है।
1,00,000? हाँ, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है।
हाँ, लेकिन इसमें खास बात ये थी कि ये पारंपरिक कथावाचक या सिर्फ भाषण देने वाले लोग नहीं होंगे। गुरुदेव ने कहा कि इनका प्रशिक्षण संगीत प्रधान होगा, म्यूजिक पर आधारित।
संगीत, ये तो अनोखी बात है, व्याख्यान क्यों नहीं?
देखिए, शायद गुरुदेव का मानना था कि संगीत जो है वो सीधे दिल को छूता है, तर्क से ज्यादा भाव जगाता है। तो युग का जो संदेश है, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक बदलाव का, वो संगीत के जरिए लोगों तक, खासकर गांव तक, ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जैसे पुराने जमाने में नालंदा, तक्षशिला थे, वैसे ही अब स्थानीय स्तर पर प्रज्ञा प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं, मगर संगीत पर जोर देते हुए।
ये तो वाकई एक अलग सोच है। अच्छा, ये हुआ पहला काम, फिर दूसरा?
दूसरा कदम था 1,00,000 यज्ञों का आयोजन।
यज्ञ? लेकिन आजकल यज्ञ तो बड़े खर्चीले माने जाते हैं।
हाँ, यहीं पर गुरुदेव ने स्पष्ट किया, उन्होंने बड़े खर्चीले दिखावे वाले यज्ञों के लिए साफ मना किया। उनका जोर था सरल, सामूहिक और नियमित यज्ञ पर। रोज नहीं तो कम से कम हर महीने अमावस्या, पूर्णिमा या कोई एक दिन तय कर लें, छोटी सी वेदी, शायद 5 कुंड की ही, बनाकर हवन करें।
और सामग्री, उसमें भी कुछ खास बताया?
बिल्कुल, बहुत सरल, सिर्फ घी और गुड़ की छोटी छोटी गोलियां, बेर के बराबर। उद्देश्य था कि इनकी जो सुगंध है वो वातावरण में फैले और एक तरह की सूक्ष्म शुद्धि करें। अनाज वगैरह जलाने को मना किया ताकि अन्न बर्बाद न हो। इसे सामूहिक जन्मदिन मनाकर भी कर सकते हैं। गुरुदेव ने हिसाब लगाया कि अगर 24,00,000 परिजन अपने जन्मदिन पर ही छोटा सा हवन कर लें, तो भी ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। मतलब सादगी, सामूहिकता और नियमितता, ये मुख्य बातें थी।
समझ गई, यज्ञ सूक्ष्म शुद्धि के लिए। फिर तीसरा काम क्या था?
तीसरा काम था वृक्षारोपण, पेड़ लगाना।
हाँ, ये तो पर्यावरण के लिए जरूरी है ही।
जी, और गुरुदेव ने इसे यज्ञ जितना ही महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि पेड़ सीधे सीधे भौतिक वातावरण को साफ करते हैं, हवा का प्रदूषण, पानी का जहर वो सोखते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो घर में तुलसी लगा लें, या छोटी सी शाक वाटिका बना लें, या कहीं भी सरकारी जमीन पर किसी की सहमति से पेड़ लगाएं, और सबसे जरूरी बात, उसकी देखभाल करें। सिर्फ लगाकर छोड़ना नहीं, औषधीय पौधे लगाने का भी सुझाव था, जैसे आंवला, नीम, बेल, इनकी पत्तियां हवन में भी काम आ सकती हैं।
सही बात है, यानी यज्ञ और वृक्षारोपण दोनों मिलकर वातावरण को शुद्ध करें, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। अच्छा, चौथा कदम क्या था?
चौथा कदम था नई तरह की शक्ति पीठों की स्थापना।
शक्ति पीठ, जैसे वो बड़े बड़े मंदिर होते हैं?
नहीं नहीं, यहीं पर फिर से एक अलग सोच है। ये लाखों-करोड़ों खर्च करके बनने वाले विशाल भवन नहीं होंगे। गुरुदेव ने कहा कि ये बहुत कम लागत वाले केंद्र होंगे, यहाँ तक कि 100 रुपए में भी शुरू हो सकते हैं। कोई किराए का कमरा हो, धर्मशाला हो या कोई साधारण सी झोपड़ी भी हो सकती है।
तो फिर इनका मतलब क्या है? अगर भवन महत्वपूर्ण नहीं, इनमें होगा क्या?
इनमें होंगी गतिविधियां, एक्टिविटीज। ये केंद्र जीवंत होने चाहिए। जैसे यहां बड़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की क्लास चले, बच्चों के लिए संस्कारशाला हो, वही जो प्रज्ञा प्रशिक्षण विद्यालय की बात हुई थी उनकी गतिविधियां हों। मतलब ये कि ये जगहें लगातार लोगों में जागरूकता लाने और अच्छे इंसान बनाने का काम करें, व्यक्ति निर्माण का केंद्र बने। इमारत से ज्यादा जरूरी है वहां होने वाला काम जो समाज में अच्छी ऊर्जा और अच्छे विचार फैलाएं।
अच्छा, तो ये चार मुख्य काम हो गए, संगीत वाले प्रचारक, सरल यज्ञ, पेड़ लगाला और कम लागत वाले एक्टिविटी सेंटर। और मुझे याद है अंत में एक निमंत्रण भी था शायद।
हाँ बिल्कुल, पूजी गुरुदेव ने बहुत प्रेम से सबको शांति कुंज आने का निमंत्रण दिया। उसे ज्ञान की गंगा का उद्गम यानी गोमुख कहा। एक ऐसा एनर्जी सेंटर बताया जहाँ गंगा जी का किनारा है, हिमालय पास में है और सप्त ऋषियों की तपोभूमि का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि वहां आकर देखें कि कैसे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में कैसे विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ा जा रहा है, कैसे सरल, सादा और संस्कारी जीवन जिया जा सकता है। यहां तक कि बच्चों के जो संस्कार होते हैं ना, मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, यहां तक कि विवाह भी, वो बहुत कम खर्च में कराने की व्यवस्था है, उसका भी जिक्र किया। एक तरह से शांति कुंज को प्रेरणा लेने की जगह बताया।
तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव ने वातावरण परिशोधन के लिए, यानी हमारे आसपास की दुनिया और हमारे मन की दुनिया दोनों को बेहतर बनाने के लिए एक पूरा खाका दिया। संगीत से ज्ञान फैलाना, सरल यज्ञ करना, पेड़ लगाना और एक्टिव सेंटर बनाना, और प्रेरणा के लिए शांति कुंज।
जी हाँ, इन सब का निचोड़ यही है कि व्यक्ति और समाज में अच्छे विचार, अच्छे संस्कार डाले जाएं, जिससे ये जो बिगड़ता हुआ माहौल है, चाहे वो बाहर का प्रदूषण हो या अंदर का भटकाव, वो सुधरे और नए युग का आगमन अच्छा हो, सकारात्मक हो। और ये सारी योजना ऐसी है कि इसमें सब लोग शामिल हो सकते हैं, सामूहिक जिम्मेदारी है और तरीके बहुत सरल हैं, व्यवहारिक हैं, कोई भी अपना सकता है।
यहाँ एक बात सोचने की है, पूज्य गुरुदेव ने वातावरण परिशोधन की बात तब कही थी, इसमें भौतिक शुद्धि भी है, वैचारिक शुद्धि भी है। आज का युग तो डिजिटल युग है, यहाँ सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशन का भी एक तरह का प्रदूषण है, मानसिक भटकाव है। तो आज के समय में उनके इस वातावरण परिशोधन वाले विचार को हम कैसे समझें और कैसे अपने जीवन में लागू करें, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।